الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضلنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد کیا ہے کہ جب تک انسان اللہ کا ذکر کرے گا اللہ بھی اس کا ذکر کرے گا، اس نے اس بات کی قید بظاہر ہے. انسان اگر ذکر بھی کرے، انسان اپنی زندگی میں آدھا وقت تو سو کے گزارتا ہے، اور اگر لڑکا ہے تو 15 سال سے پہلے کا تو اس کا حساب کتاب یا کام نہیں، لڑکی ہے تو 9 سال سے پہلے کا اس کا کام. انسان 50 سال 60 سال 100 سال 200 سال اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے تو وہ ذکر زبان میں خاموش ہے. لیکن اگر کوئی صدق دل سے اللہ کا ذکر کر جائے تو پھر اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم نے میرا ذکر کیا تو میں بھی تمہارا ذکر کر. تو اللہ ہمارا ذکر کرے، اس کے معنی یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام و نشان باقی رہ جائے، ہمارا کردار باقی رہ جائے، ہماری بات باقی رہ جائے، لوگ ہزاروں سال بعد بھی ہم کو جانیں، تو ہمیں اپنی اس حیات کو جاویدہ بنانے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا ہوگا تاکہ اللہ بھی ان کا ذکر
کرے.
ہماری زبان 100 سال 200 سال میں رک جاتی ہے، خاموش ہو جاتی ہے، لیکن خدا کی کوئی بات جب اس کی کتاب میں رقم ہو جاتی ہے تو صبح قیامت تک وہ شریعت کی کتاب بن کر، وہ حکم الہی کی بات بن کر، فرمان الہی کا فرمان بن کر لوگوں کی زبان پر جاری رہتی ہے. بظاہر اصحاب کہف نے کچھ دن کے لیے اپنے آسا آرام کو، عیش و آرام کو چھوڑا، और ऐसे माहौल में उनसे ना जाने कितना ज्यादा मुसलमानों में और ना जाने कितने आबिद गुजरे हैं कि जिसने 300 साल 200 साल 400 साल की इबादतें की लेकिन उनका नाम इस तरह से बाकी नहीं है जिस तरह असहाबे कहफ है। इसकी वजह यह है कि अल्लाह जो ये बताना चाहता है कि देखो हमारे यहाँ पर क्वांटिटी शर्त नहीं है, हमारे यहाँ क्वालिटी शर्त, हमारे यहाँ पे कमियत शर्त नहीं है, हमारे यहाँ पर कैफियत शर्त है। कौन कितना उसकी राह में दे रहा है ये शर्तें नहीं की जाती बल्कि कौन किस तरह उसकी राह में दे रहा है ये। और परवरदिगार आलम ने कहा कि असहाबे कैफ ने उस वक्त हमारे जिक्र को बुलंद किया कि जब तौहीद का कत्लेआम किया जा रहा है, तौहीद के कलमात को बयान करने वालों को सूली पे चढ़ाया जा रहा है। ऐसे मौके पर इनके पास भी मौका था कि ये जिंदगी बसर कर लेते लेकिन इन्होंने गौर और फिक्र की और ये सोचा कि हम अभी जिस उम्र में खड़े हैं उस उम्र के हिस्से से 20 साल 30 साल 50 साल 100 साल और ज्यादा जिंदा रह लेंगे लेकिन अगर इस तरह से हम भी खामोश होकर रहे तो फिर याद इलाही के परवाने किस तरह से जमा होंगे। लिहाजा इन्होंने अपने आप को उस दुनिया की रोशनियों से निकाला और रोशनियों से निकालने के बाद अपने आप को पहाड़ के दामन में जगा दी और एक गार में जाकर चले गए कि खुदाया तो यहाँ पर ये नहीं था कि ये उनसे जान बचा के आए हैं बल्कि इससे मुराद ये थी खुदाया हम तेरी राह में दुनिया छोड़ के आए, हम तेरी राह में अपने ऐशो आराम को छोड़ के आए हैं। जब ये असहाबे कैफ आकर एक गार में याद इलाही में मशगूल होते हैं तो दिन भर की थकान इनको ऐसी नींद सुलाती है कि जब आंख खुलती है तो 309 साल बाद आंख खुलती है और उसके बाद आंख खुलती है तो वही भूख जिस भूख को लेके सोए थे उसी भूख ने उनको बेदार किया और एहसास हुआ कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं तो नीचे आके उनको मालूम हुआ तो मालूम ये हुआ कि अब हम ये देखना चाहते हैं कि इमाम हुसैन ने अपने सरो तन में जुदाई होने के बाद नौ के नेजा पर कुरान मजीद के जिस सूरे का इंतखाब किया उस सूरे कहर था जिस सूरे का इमाम हुसैन ने इंतखाब किया और नौके नेजा पर तिलावत की उस पूरा सूरह कह था तो मैं कहूँगा यार यमन रसूलिल्लाह इतना बड़ा कुरान था और सूरह रहमान सूरह यासीन इतने सूरे थे कहा कि तुम नहीं जानते सूरह कैद की तिलावत करके मैं लोगों के सोए हुए जहनों को बेदार कर रहा हूँ कि जिन्होंने खुदा की याद को बचाने के लिए अपने आप को गार में महफूज कर लिया तो कुदरत ने उनको नहीं भुलाया तो हम तो आलम ऐलान बचा रहे हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद अल्लाह में और बंदे में फर्क अब्दुल माबूद में फर्क क्या है। मिसाल के तौर मेरे एक बहुत अजीज दोस्त इस शहर में बड़े चाहने वाले बड़ी मदद का जज्बा रखने वाले एक रोज मैंने उनसे कहा कि हुजूर मुझे $100 की जरूरत है तो फौरन पर्स निकला वॉलेट निकला और सौ बोला ना और चाहिए जो बोले कहा नहीं हुजूर मुझे 100 की जरूरत और बड़े खुश हो गए। थोड़ी देर गुजरी थी कि दोबारा मुलाकात हो गई हमने कहा हुजूर जरा $200 की और जरूरत आ गई लेकिन उस मेरे अजीज दोस्त का वो हाल नहीं जो सबसे पहली बार है कैफियत अब वो नहीं है कि मौलाना और चाहिए बड़े नाराजगी के अंदाज में बहरहाल इज्जत करते थे एहतराम करते थे लिहाजा 200 और निकालते वैसे दिए नहीं जाते ऐसा उमूमन बाद में जिसमें कभी कभी तो दो कहते हैं इतने सप्ताह आपने इकरार किया है इसलिए मैंने नाम लेना बंद कर दिया फिर आपने सबके सामने इकरार किया है कि हमने आपको इतने पैसे दिए तो बहरहाल अब वो अंदाज नहीं है जो पहली बार में था। थोड़ी देर गुजरी थी कि और ज़रा से हमने उनसे तकाजा किया कहने के हजूर आप बड़े शाह खर्चे करते क्या है इतने पैसों का एक सवाल के साथ कि करते क्या है दे दिए लेकिन एक सवाल खड़ा कर। अब हालात ये हो गए कि अब हमें जो देखा उन्होंने तो दूर से ही अपना रास्ता बदल लिया अब हम सलाम कर रहे हैं तो सलाम का जवाब भी वापस नहीं आ रहा, और बहुत ज्यादा हमने उनकी तरफ इशारे किए तो कहा हुजूर अभी तो मैं जल्दी में हूं, घड़ी दिखाई, वो जल्दी नहीं थी, वो दूसरा मसला था। बहरहाल हम भी कहां छोड़ने वाले थे, तलाश करते करते उनका घर ढूंढ निकाला और दरवाजे पर पहुंच गए। अब बच्ची ने कहा, दरवाजा खोला, हमने कहा बेटा बाबा हैं, बच्ची बोली बाबा हैं, मैंने कहा बेटे बाबा को भेजो, और मौलाना है, बच्ची ने जाके बताया कि मौलाना है, तो कहा कह दो बाबा नहीं। बच्ची ने यही बात दोहरा दी कि बाबा कह रहे हैं कि बाबा घर पे नहीं। अजीजो इतना शफीक दोस्त कि जिसने एक मरतबा कहने पर, दो मरतबा कहने पर, तीन मरतबा कहने पर हमारी बात को रद्द ना किया और आलम गुरबत में हमारी मदद फरमाई, लेकिन किस बार बार के मांगने ने हमें नुकसान ये पहुंचाया कि हमारी इतनी अच्छी दोस्ती खत्म हो गई, हमारी दोस्ती खत्म हो गई, कि वो बंदे खुदा जो आगे बढ़ के हाथ मिलाता था, एहतराम करता था, सलाम करता था, जवाब देता था, गले से लगाता था और कभी कभी राइड भी देता था, तो बहरहाल वो सब बंद हो गया। बस अजीजो अब्द और महबूद में यही फर्क है, बंदा ज्यादा मांगने से दूर होता है और रब मांगने से करीब होता है। जितने दुनिया में औलिया इलाही हुए हैं वो कसरत तकाजा के बाद हुए हैं, वो अपनी छोटी सी छोटी बात को अल्लाह के सामने रखते हैं, लिहाजा वो औलिया खुदा कहलाने लगे, वो वली खुदा कहलाने लगे। तो मालूम यह हुआ कि अब्द और माबूद में फर्क यह है कि बंदा जो है मांगने से दूर होता है और अल्लाह मांगने से करीब होता है। उसकी वजह भी दुरुस्त है, क्योंकि बंदे के पास जो है खजाना महदूद है लेकिन उस अल्लाह के पास नामहदूद है, बंदे के तमाम की तमाम चीजें महदूद हैं लेकिन अल्लाह के पास इन जरायों की कोई हदूद नहीं है। वो कल के लिए भी, वो कल भी देता था, आज भी दे रहा है और कल भी देता रहेगा। उसने कहा कि मैं रहमान हूँ, मैं सबके लिए रहम करने वाला हूँ, लेकिन आखिरत में सिर्फ मोमिन पर रहम करने वाला हूँ। लिहाजा उसने किसी का दाना पानी नहीं रोका, उसका सजदा करे तो देता है, उसका सजदा ना करे तो देता है। अगर अल्लाह को हमारे सजदों की जरूरत होती तो इंसानों को भी रेप्टिलिया ऑर्डर में पैदा कर दिया होता। डॉक्टर साहब ज्यादा समझेंगे कि रेप्टिलिया ऑर्डर में पैदा कर दिया होता कि अपनी जमीन नाज को जमीन से ही नहीं उठा पाता और अपनी इस पेशानी को जमीन पर रगड़ कर चलता, लेकिन कुदरत ने कहा कि तमाम इख्तियार आपके पास भेजूंगा, तमाम इख्तियार देकर भेजूंगा, तमाम की तमाम आजादी देकर भेजूंगा, उसके बाद मैं कहूंगा इन्ना हदैना सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, कि हमने तुम्हें हिदायत कर दी है, अब ये तुम्हारी मर्जी है कि रोशन रास्ते पर अपने कदम बढ़ाओ या अंधेरे रास्ते में गुमराह हो जाओ। कुदरत ने ये हमारे साथ इंसाफ किया है, लिहाजा अजीजो परवरदिगार आलम का कोई अमल बगैर हिकमत के नहीं। हमारा सिलसिला बयान चल रहा था कि इमाम हुसैन अलैहि सलाम हमारी जानिब इन हुसैन की इसके आलम हमें दीवाने बूझ दे, इन चशम की इसके दिल हो हमें परवाने बूझ दे। ये हुसैन कौन है कि पूरा आलम इसका दीवाना बना, ये ऐसी कौन सी शमा है जिसका पूरी कायनात परवाना बना। अजीज़ो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ाते वाला सिफात जिनको आम लोगों से तशबीह नहीं दी जाती बल्कि ज़ियारत वारिसा में हम पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका या आदम सिफातिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा नबीअल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा इब्राहिम खलील। हज़रत इब्राहिम पैगम्बर जो खलील खुदा है उनका वारिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करार दिया। हज़रत खलील खुदा कौन है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम गिरामी कुरान मजीद में नबियों के तकरार नाम के अतबार से दूसरे नंबर पर आए। सबसे ज़्यादा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम जिक्र हुआ है 136 मरतबा 136 टाइम, और उसके बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इसमें गिरामी जिक्र हुआ है जो 69 टाइम, यानी 69 टाइम हज़रत इब्राहिम का जिक्र हुआ है 65 सूरों में। कुरान मजीद के 114 सूरों में से 65 सूरों में हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम का जिक्र हुआ है और बज़ाते खुद इनके नाम से एक सूरा नाज़िल हुआ। आखिर ये कौन है कि जिसका कुरान इतना ज्यादा तज़किरा कर रहा है, ये कौन है कि जिसको कुरान इतनी बार लोगों के दरमियान बता रहा है, ये कौन है कि जिसके बनाए हुए मकान को लोगों के लिए मुकामे सजदा करार दे रहा है, ये कौन है कि जिसकी बीवी की पानी तलाश करने की कोशिशों को एक हाजी के लिए रुकने हज करार दे रहा है, ये कौन है कि जिसके बच्चे की एड़ी रगड़ने से जो पानी निकले वो मोहतरम पानी दुनिया में करार पाए, ये कौन है कि जिसके बेटे की कुर्बानी लोगों के लिए कुर्बानी का मजहर बन जाए और लोग हर साल जब मुझ पर जाए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी को याद करके दोबारा से कुर्बानी करें, और ये कौन है कि जो शैतान पर लानत के पत्थर मार दे तो मुसलमानों का पत्थर फेंकने मीना में जाने का एक अमल करार पाए, अगर इनमें से किसी अमल को छोड़ दे तो वह हाजी ना कहलाए, वो हाजी ना कहलाए। तो मालूम यह हुआ कि जिसकी सरापा जिंदगी आलम इस्लाम के एक मुवाहिद के लिए, एक मुसलमान के लिए नमूना अमल बनी हुई है, जिसकी जिंदगी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचाने के लिए उनकी वालिदा माजिदा एक गार में लेगी और उस गार में आपने उनकी परवरिश की। अजीज और दुनिया से दूर अगर किसी की परवरिश हो और उसके बाद वो मुअद्दब नजर आए तो दो ही चीजें हो सकती हैं कि या तो माँ की तरबियत ऐसी थी कि जिसने ये ऐसा परवान चढ़ाया, और या फिर ये खुदा का भेजा हुआ नुमाइंदा है कि जिसके अंदर आम लोगों से हटकर सिफतें हैं। लिहाजा दुनिया से बचाने के लिए हजरत इब्राहिम को आप गार में ले गए, लेकिन जब आपका सिन मुबारक 13 साल का हुआ तो आप गार से बाहर आए, और आने के बाद अपने रिसालत के पैगाम को, खुदा के पैगाम को फैलाना शुरू किया, भेजना शुरू किया। अब कुरान में और रिवायात में कोई ऐसी तारीख नहीं मिलती कि कब से आप नबी थे, लेकिन जब सबसे पहले हजरत आज़िया अपने चचा आज़द से जब आपकी गुफ्तगू हुई, जिद बहस शुरू हुई खुदा को लेकर, तो उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 13 साल थी, और तारीख में लिखा है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन बुतों को तोड़ दिया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को जब तकसीम किया गया तो कुरान ने उनके 4 वाकयात को बहुत मुफस्सल पेश किया है और उसमें टाइटल बनाकर पेश किया है कि सबसे पहले तो मेरा इब्राहिम वो है जो बुत शिकन है, मेरा इब्राहिम वो है कि जो बुत शिकन है। लिहाजा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, जब तमाम के तमाम लोग बाहर चले गए तो जाकर एक कुल्हाड़ी ली, तबर लिया और ले जाने के बाद तमाम बुतों को तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद एक बुत को छोड़ दिया और उसके गले में उस कुल्हाड़ी को डाल दिया। जब लोगों ने देखा कि तमाम की तमाम दुनिया उजड़ गई है उन लोगों की, तो कहा कि ये कैसे हुआ, कहा कि मुझसे क्या पूछते हो, जिसके हवाले करके गए थे उससे पूछो। किसके हवाले करके गए, कहा कि तुम तो खुद अपने सारी बातें इनके हवाले करके जाते हो, तो इनसे ही पूछ लो कि इनको किसने नुकसान पहुंचाया। तो कहा कि फिर इस बड़े से पूछ लो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या लोग नहीं जानते कि खुद भी ये कहते थे कि ये बोल नहीं सकते, तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि तुम इनसे क्यों नहीं पूछ लेते। बाद औकात माहौल ऐसा होता है कि किसी चीज को सिखाने के लिए, किसी चीज को बताने के लिए इंसान ऐसे कारनामे अंजाम देता है ताकि वो ये कहते कि ये कैसे बताएंगे, तो बोल भी नहीं सकते। तो हजरत इब्राहिम कहते हैं कि जब ये बोल नहीं सकता तो ये तुम्हारा खुदा कैसे हो सकता है, जब ये तुम्हारी सुन नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मामून का दरबार, हारून रशीद का दरबार, जनाब बहलोल दाना अपने पैरों को कीचड़ में भरे हुए दरबार में पहुंचे, क्योंकि बहलोल के सिलसिले में कह रखा था कि देखो ये अगर दरबार में महल में आए तो आने दिया करो, वरना ये ऐसी बातें करेगा जिससे हमारी बदनामी होगी। बहलोल को इजाजत थी कि वो दरबार में चले जाए, लेकिन सिपाही समझते थे हरबार की तो इजाजत नहीं है। बहलोल ने क्या किया कि जब बादशाह को, खलीफा को नहीं देखा तो उसके तख्त पर जाकर बैठ गए, जो कि मखमली लिबास से आरास्ता था, सजा हुआ था, जो बादशाह का तख्त पर जो उनका सिंहासन होता है, जो उनकी कुर्सी होती है, गंदे पैरों को लेकर उस पर खड़े हो गए और उस तमाम तख्त को खराब कर दिया। सिपाही ने उनको मारा कि तुमने इसको खराब क्यों किया। बहलोल जोर जोर से रोने लगे। हारून रशीद आया, कहा कि क्या हुआ बहनों क्यों रोते हो? कहा तेरे सिपाही ने मुझे मारा। कहा कि हम मना कर देंगे सिपाही को, कहेंगे तुम पर हाथ ना उठाए, लेकिन बहनों खामोश नहीं होते। कहे खामोश नहीं होते। कहा बहनों अब चुप हो जाओ, तुमने हमारा इतना कीमती कीमती तख्त खराब कर दिया, कपड़ा खराब कर दिया, उसके बावजूद हमने अपने ही सिपाही को डांटा कि देखो आइंदा कभी बहनों पे हाथ ना उठाना, उसके बावजूद तुम रो रहे हो। उसके रो लाख समझाने के बाद भी बहनों ने दाना रो रहे हैं। कहा क्यों रोते हो? कहा कि क्या तू समझता है कि मैं तेरे तख्त के खराब होने से और इसकी पिटाई से रो रहा हूं? तो कहा फिर क्यों रो रहे हो? कहा कि मैं जरा सी देर के लिए गलत जगह पे बैठ गया था तो मेरी पिटाई हो गई। मैं तुझ पे रो रहा हूं कि जब तू किसी दूसरे की जगह पर बैठ गया है तो फरिश्ते तेरी कितनी पिटाई करेंगे, मैं तेरे मुकद्दर पे रो रहा हूं। सलावत पढ़े मोहम्मद,
नारे हैदरी
यार, मैं आपकी पिटाई पे नहीं रो रहा हूं, मैं तो तेरी पिटाई पे सोच के रो रहा हूं कि मैं जरा सी देर के लिए गलत जगह पे बैठ गया था जो मेरा मुकाम नहीं था, और तू जगाए आले मोहम्मद पर बैठा है, हक़ आले मोहम्मद को गस्ब करके बैठा है, फरिश्ते तेरी कितनी पिटाई करेंगे, वो भी तो अल्लाह की मर्ज़ी से। कहा मैं तेरे मुकद्दर पे रो रहा हूँ। तो बाज़ औक़ात बात कुछ और होती है, लेकिन समझाने के लिए हजरत इब्राहिम पैगंबर ने कहा कि इससे पूछ लो जो इनमें से बड़ा है, ये तुम्हें बताएगा। तो मालूम यह हुआ कि बुत शिकन होना अल्लाह के नुमाइंदे की निशानी है। और बुत किसे कहते हैं? बुत हमारी और आपकी जबान और शायरी की जबान में बुत मुजस्समे को कहते हैं, लेकिन बुत हकीकी माना में, क्योंकि कुरान ने कहा है फजतनिबुर रिज्जा मिनल औसान, कि इन बुतों से दूरी अख्तियार करो क्योंकि ये पलीद है। अगर पत्थर का बुत बना हुआ है तो बज़ाहिर वो नजिस नहीं है, अगर लकड़ी का बुत बना है, क्योंकि लकड़ी अल्लाह की बनाई हुई है, पत्थर अल्लाह का बनाया हुआ है, पत्थर पे भी अल्लाह ने सजदे का हुक्म दिया है, लकड़ी पर भी अल्लाह ने सजदे का हुक्म दिया है, मिट्टी पर भी अल्लाह ने वो सजदे का हुक्म दिया है। तो मालूम यह हुआ कि इन चीजों पर पत्थर सजदा जायज है, तो फिर ये नजिस कैसे है? ये नजिस कैसे है कि फजतनिबुर्रिज्जा मिनल औसान, इज्तनाब करो दूरी करो बुतों से, चूंकि ये नजिस है और पलीद है। तो मालूम यह हुआ कि ये पलीद नहीं है, इन पे हाथ लगाओगे तो आपका हाथ नजिस नहीं होगा, बल्कि नजिस और पलीदी यह है कि ये अल्लाह की जगह पर अपने आप को पा रहे हैं, वो खुद बुत नहीं पाता अपने आप, लोग बनाते हैं। तो मालूम यह हुआ कि लोगों का बनाया हुआ जो खुदा के मुकाबले में हो वो बुत कहलाता है। तो अजीजों, इस तरह से उस दौर के लोगों ने बुतों को बनाया था, हजरत इब्राहिम ने उनको शिकस्त कर दी, उनको तोड़ डाला। इसी तरह से वारिसे इब्राहिम ने लोगों के बनाए हुए यजीद नामी बुत को तोड़ दिया, उसकी अना के बुत को तोड़ा, उसकी दौलत के बुत को तोड़ा, उसके गुरूर के बुत को तोड़ा, उसकी ताकत के बुत को तोड़ा, उसकी हुकूमत के बुत को तोड़ा, और उसने जो खौफ विरास लोगों पर फैलाया हुआ था, यजीद जो तख्त खिलाफत पर बैठा है उससे पहले जो उसके वली अहद होने की रस्म अदा की गई है, तो लोगों से गले नहीं उतर रही थी, लोगों के गले नहीं उतर रही थी, क्योंकि इमाम हसन मुज्तबा से ही उसका सुलहनामे में वादा था कि मैं अपने बाद किसी को जानशीन मुकर्रर नहीं करूंगा, लिहाजा उसने सुलह की भी सुलह को भी तोड़ा था। उसके बावजूद यजीद को किस तरह से उसने वली अहद बनाया, लोगों की गर्दनों पे तलवारें रखता था और उसके बाद कहता था कि तुम्हें मंजूर है मेरे बेटे की वली अहदी, मंजूर है या नहीं, यानी जान की बाजी लगाकर अब अगर ऐसे माहौल में हुसैन को 72 भी मिल जाएं तो समझ लो 72 मुमलिकत मिली। ऐसे माहौल में जहां पर जान देने की बात पहले होती थी और यजीद की वली अहदी को बाद में कबूल किया जाता था, ऐसे माहौल में वो दिलवाले अगर हुसैन का साथ दे तो हुसैन ने वो यजीद की जो अना का बुत, यजीद की हुकूमत का बुत, यजीद की ताकत का बुत। अजीजों, कूफे वाले कमजोर नहीं थे, असल में कूफे की जो बुनियाद रखी गई है वो एक फौजी छावनी के उन्वान से रखी गई, और सबसे ज्यादा बहादुर और सबसे ज्यादा हुनरमंद जंग की जो तरीकेकार होते हैं उसमें सबसे ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं कूफा थे। कूफे में 20,000 कमांडो एट ए टाइम तैयार रहते थे कि जिनका काम यह था कि अगर कोई इस्लामी फौज शिकस्त पा रही है तो वो फौरन उनके बैकअप के लिए जाते थे, और जब लोग सुनते थे कि कूफे की फौज आ रही है तो लोग मौलाए कायनात ने उसको अपना दारुल खिलाफा यूं ही बनाया था, क्योंकि तमाम फितने, तमाम इंकलाबात, तमाम बातों کا سرچشمہ اور مرکز جو تھا کوفہ تھا. یہاں وہ کوفے والے کہ جو تلوار اور جنگ اور خون سے نہیں ڈرتے تھے. آخر عبیداللہ ابن زیاد نے ایسی کون سی ہیبت کے لیے ان کی دلا دی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنی جانیں بچا کر خاموش بیٹھ گئے تھے, اور حسین کو 20,000 خط لکھنے کے باوجود انہوں نے کہہ دیا برسس رسول ہمارے پاس ایسا موقع نہیں ہے کہ ہم آپ کی خدمت انجام دیں اور ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. بے شک ہمارے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ہماری تلوار عبیداللہ کے ساتھ, ہمارے دل آپ کے ساتھ ہیں, ہم مانتے ہیں کہ آپ اچھے انسان ہیں اور نبی کے نواسے ہیں, لیکن امام حسین علیہ السلام. تو معلوم یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام جس طرح سے حضرت ابراہیم اس تنہا پوری آبادی میں تنہا موحد تھے, اور کہا قدرت نے کہا کہ ابراہیم کا نہ ملتا, ابراہیم تم اکیلے ہی میرے لیے ملت ہو, تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ اس امت کو امت مانتا ہے, ملت کو ملت مانتا ہے جو اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھتا ہے, کیونکہ یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے لہذا اللہ کو ماننا ضروری ہے. امام حسین علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کے توڑے ہوئے بت دوبارہ بن گئے, لیکن حسین نے جو آزاد یزید کی بیعت کے بت کو توڑا اور اس کی انا کے بت کو توڑا, اس کے بعد آنے والے انقلابوں میں کوئی بھی حسین کا چاہنے والا کبھی موت سے نہیں ڈرا. حسین نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتایا کہ ہمیں حق حاصل ہے کیونکہ ہم ابراہیم کے وارث ہیں. حضرت ابراہیم کون تھے؟ بت شکن. دوسری صفت حضرت ابراہیم کی علیہ السلام کی کیا تھی؟ دوسری صفت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تھی کہ آپ عشق الہی میں اتنے شاد تھے, اتنے مصروف تھے کہ کوئی بھی قانون حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی محبت کے آڑے نہیں آئے, کوئی بھی امتحان, کوئی امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ ہو سکا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری صفت یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے کے متکبر کا مقابلہ کیا. امام حسین علیہ السلام نے بھی کیا کیا, عشق الہی میں سرچار بھی تھے, اپنے زمانے کی سب سے بڑی طاقت کو چیلنج کیا. اور چوتھی صفت قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بتائی ہے, وہ یہ بتائی ہے کہ ابراہیم میری محبت میں اتنا سرچار تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کی بھی قربانی دے ڈالی, بیٹے کی قربانی کو, جس کی وجہ سے آج پورا عالم اسلام بڑی خوش خوشی گوشت کھاتا ہے, قربانیاں کرتا ہے, بقرعید کے تہوار کو مناتا ہے اور حجاج بڑی خوشی سے قربانی دیتے ہیں. یہ قربانی کی ایجاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, امام حسین علیہ السلام نے بھی قربانی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تین امتحان ہوئے, اللہ نے تین امتحان لیا اور یہ تینوں امتحان کو قرآن میں اللہ نے نقل کیا. پہلا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہوا وہ ہوا مال کا, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دولت اور مال جو ہم نے دنیا کو دی ہے اور اس دولت اور مال کے یہ لوگ امانت دار بنے ہیں, اگر ہم واپس اپنی امانت کو مانگ لیں تو یہ ان کے دل پر کیا بیتتی. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا. ابراہیم علیہ السلام بکریاں چلا رہے ہیں, واللہ آپ کے پاس بہت ساری بھیڑیں شیپس مصروف ہیں, بکریاں اپنے جنگل میں چر رہی ہیں اور وہ بیٹھے کیا دلائی میں مصروف ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان سے تھوڑی دوری پر ایک نوجوان بڑا خوبصورت بیٹھا ہوا ذکر الہی کر رہا ہے, سبحان قدوس کی آوازیں بلند کر رہا ہے, اور نہ صرف بلند کر رہا ہے بلکہ جیسے جیسے وہ جوان ان کلمات کو دہراتا ہے آس پاس کے تمام ذرات اس کے ساتھ تسبیح الہی کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس جوان کی اس کیفیت کو دیکھا تو اپنے ذکر کو چھوڑ کے اس کا ذکر سننے کے لیے اس کے قریب آئے, وہ جوان خاموش ہو گیا. حضرت ابراہیم نے کہا کہ ابھی میرا دل نہیں بھرا, اللہ کی یاد اس طرح سے میں نے آج تک نہیں سنی, اگر تم اس ذکر کو کرو گے تو. آنے والے نے کہا کہ تم مجھے کیا دو گے؟ کہا کہ میرے پاس یہ بھیڑ بکریاں میری پراپرٹی ہے, میری املاک میں ملکیت میں ہے. کہا کہ کیا ان میں سے آدھی مجھے دے سکتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں آدھی دے دوں گا. اس نے ذکر کرنا شروع کیا, تھوڑی دیر بعد پھر خاموش ہوا. کہا کہ اور ذکر کرو, اس نے تو مجھے اور تشنا کر دیا. کہا کہ ابراہیم کے یہ آدھی بھی مجھے دے دو گے؟ کہا یہ آدھی بھی تمہیں دے دوں گا. حضرت ابراہیم نے آدھی بھی دے دی. اس کے بعد پھر اس نے ذکر کرنا شروع کیا, پھر خاموش ہوا. کہا کہ اور ذکر کرو. کہا ابراہیم اب تمہارے پاس ہے کیا جو مجھے دو گے؟ इब्राहिम ने कहा कि मेरा माल तो जा चुका, मेरी जान मेरे पास है, अगर तुम कहोगे तो मैं अपनी गुलामी तुम्हारे नाम लिख दूंगा, मैं तुम्हारी खिदमत करूंगा, लेकिन मेरे अल्लाह का जिक्र ना रुको। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कहने पर उसने और ज्यादा जिक्र किया। जब वो खामोश हुआ तो हजरत इब्राहिम आकर उसके पास बैठ गए कि भाई मेरी बकरियां भी तेरी और मेरा नफ्स भी तेरा, और जो खिदमत मुझसे लेनी चाहता है। आने वाले ने कहा कि इब्राहिम मुझे ना तुम्हारी बकरियों की जरूरत है, ना मुझे तुम्हारी जान की जरूरत है, तुम मुझे नहीं पहचाने, मैं खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता जिब्राइल हूँ और अल्लाह ने तुम्हारा इम्तिहान लिया था कि जाओ मेरे बंदे को जाके देखो कि मेरी राह में, मुझे मेरे इश्क में, मेरी मोहब्बत में ये क्या अपने माल को दे सकता है। तो ऐसे मौके पर तुमने अपने इम्तिहान में कामयाबी हासिल की, लिहाजा अल्लाह ने कहा है कि ना सिर्फ ये कि इसकी बकरियां लौटा दो बल्कि आज से इसको खलील का लकब दे दो कि तुम अल्लाह के दोस्त हो, तुम अल्लाह के दोस्त हो, इस लकब को इनको दे दिया जाए। अजीजा ने मोहतरम जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने माल की कुर्बानी दी, अपने माल की कुर्बानी दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम माल को जो है उम्मत मुस्लिमा पर निछावर कर दिया, इनकी औलादों ने अपने तमाम माल को मिल्लत इस्लाम पर लुटा दिया। उसके बाद जान की कुर्बानी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तौहीद के कलमे को आगे बढ़ाऊंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ये कहने पर उन्हें मिंजनीर में भेजा फेंका जाने लगा। इब्राहिम अभी भी खुदा की एक तौहीद लगाने से बाज आ जाओ। इब्राहिम ने कहा कि नहीं, मैं खुदा को एक मानता रहूंगा। कहा कि तुम्हारी जान ले ली जाएगी। आज नारे नबूत को रोशन किया गया, ऐसी आग जलाई गई, ऐसी आग जलाई गई। अजीजो तारीख में अल्लामा मजलिसी ने इस बात को लिखा है कि जो शहद की मक्खी है, कोई हजरत इब्राहिम की मदद तो नहीं आया, सिर्फ ये जो शहद की मक्खी जो पाई जाती है, बी ऑफ हनी, हनी भी पाई जाती है, इस मक्खी ने अपने मुंह में पानी लिया और कहा कि हम खलील खुदा की जान बचाएंगे, हम खलील खुदा की जान बचाएंगे। लिहाजा कुदरत ने कहा कि तुम आग तो ना बुझा सकी, लेकिन अपने जज्बे का इजहार करके तुमने मेरी मोहब्बत को हासिल कर लिया है। लिहाजा कहा कि अब जो तुम्हारे मुंह में आएगा हमेशा पाक और पाकीज़ा आएगा, और वो जो पाक और पाकीज़ा आएगा दुनिया के लिए शिफा बन जाएगा। क्यों? इंसान भी दो तरह के होते हैं, जिस तरह मक्खियां दो तरह की होती है। एक मक्खी खूबसूरत माहौल को छोड़ के खराब चीजों पे, डस्ट पे, ट्रैश पे बैठती है, वहां से बैक्टीरिया लेके उठती है और डिजीज पैदा करती है। और शहद की मक्खी तमाम बुरे माहौल से परहेज करते हुए अपने आप को पाक और पाकीज़ा हलाल रिस्क की तरफ पहुंचाती है, चाहे उसके लिए उसको वीर सफर करना पड़े, लेकिन वो फूल पर जाकर बैठती है। जब वो फूलों पर बैठती है तो उसके उस हिस्से को चूसती है कि जिसके जरिए जो है शिफा बनती है। मौला ने भी यही फरमाया कि अगर तुम्हारे पेटों में हलाल खाने जाने लग जाए तो तुम्हारे मुंह से बुरे कलमात निकल नहीं सकते। अगर मीठा, अगर पाक और पाकीज़ा खाओगे तो जबान शीरीन बन जाएगी। अजीजो तो अच्छाई और बुराई के लिए लोग भी ऐसे ही हैं, किसी भी कम्युनिटी के हों, किसी भी मजहब मिल्लत के हों, उनमें भी अच्छे और बुरे पाए जाते हैं। कुछ जो है हाउस फ्लाई की तरह होते हैं, बुरी जगह जाते हैं, बुराइयों को अपने अंदर दरमियान जज्ब करते हैं, बुराइयां फैलाते हैं। और उनकी एक खास आदत और है कि जो घरेलू मक्खी होती है हाउस फ्लाई, इसकी खास आदत है कि इंसान के पास भी जब आती है तो उसके पूरे खूबसूरत जिस्म पे नहीं बैठती। अगर उसके जिस्म पे कोई जख्म है, फोड़ा फुंसी है, तो बार बार वहां जाकर उसको हिट करती है, बार बार उसकी उस बुराई को। तो बुरे इंसान की भी यह सिफत है कि इंसान की तमाम अच्छाइयों को छोड़ के उसकी बुराइयों पर नजर रखता है और उसको उस बुराई के जरिए जलील करता है। उसकी बेइज्जती जो करता है इंसान, वो उसकी बुराई को तलाश करके पूरे अच्छे जिस्म को जिस तरह मक्खी छोड़ देती है, लेकिन शहद की मक्खी का अंदाज अलग है, उसका काम यह है। और यही वजह है कि शहद की मक्खी को इजाजत नहीं है कि वो गंदी चीजों को खाकर आए, नजिस चीजों को खाकर आए। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि हर शहर की मक्खी पे एक रानी मक्खी होती है। रानी हम कह देते हैं, असल में वो बादशाह, उसको कहते हैं यासू। उस मक्खी को यासू कहते हैं। उसका काम यह है कि जो भी शहर की मक्खी बाहर से आए उसके मुंह को घुसूंगे, उसके हलाल और हराम का पता लगाए। अगर वो हलाल शय खा के आ रही है उसको छाते में जाने की इजाजत दे, और अगर कहीं गलत जगह से आ रही है तो उसको एक बार में दो टुकड़े कर दे। आप शहद के छत्ते के नीचे देखेंगे कि मक्खी के दो टुकड़े हुए आपको मिलेंगे। तो इस मक्खी को यासूब कहते हैं कि जो अच्छाई और बुराई में फैसला करते हैं, यही वजह है कि मौलाए कायनात का नाम यासूबुद्दीन है। यासूबुद्दीन है अली को, ये ना देखो कि ये दौरे सियासत पर बैठा है, तख्त सियासत पर बैठा है या बोरिया नशीन होकर बैठा है। अली जहाँ बैठ जाए हक है, क्योंकि रसूल ने फरमाया है अल हक व मा अल अली व अल अली मा अल हक, हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। जहाँ पर अली को देखो समझ लेना हक उधर जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने इस बात को नहीं समझा, मौलाए मुत्तकियान को तख्त खिलाफत उनसे छीन लिया गया, लेकिन मौलाए कायनात मुसलमान जो है अली की नेमतों से, रहमतों से, इल्म से, तक्वे से अपनी जान बचाकर दूर भागते रहे, लेकिन यहूदी अपनी जमीनों का मुकद्दर अली से संवरवाता रहा। उसको मालूम था कि जिस जमीन पर अली हल चला दे, जिस जमीन पर अली खेती कर दे, वो लैला हो गई, क्योंकि अल्लाह का शाकिर बंदा है, नुकसान नहीं हो सकता। एक शख्स रिसालत मुआब के रहलत के बाद, वफात के बाद मदीने मुनव्वरा आया, वो चाहता था कि दीन मुबीन इस्लाम को कबूल करे, इस्लाम को कबूल करे। उसने देखा कि कहा कि खुदा का रसूल तो दुनिया से चला गया, उसने कहा कि अब खुदा के रसूल के बाद कौन कोई तो होगा इसका देखने वाला। उसको दरबार में ले जाया गया, जब दरबार में गया तो उसको नहीं लगा कि मैं रसूल के सही जगह पर आ गया। उसने कहा कि मैं इरादा तो ये करके आया था कि दीन ने ईमान की, दीन मुबीन की दौलत से मालामाल हो जाऊं, लेकिन अब मैंने इरादा मुंतवी कर दिया है और शर्त के साथ दीन को इख्तियार करूंगा। अगर खुदा का रसूल होता तो मैं उनसे सवाल करता, लेकिन अब चूंकि खुदा के रसूल के बाद उसका नुमाइंदा है तो मैं उससे कोई सवाल करूंगा। और सवाल यह है कि मैंने सुना है कि ये दीन मुबीन इस्लाम बड़े मौजज़ों और करामात का मजहब है, अगर तुम खुदा के रसूल के नुमाइंदे हो तो कोई मौजज़ा दिखाओ ताकि मैं उस मौजज़े को देखकर ईमान लाऊं और अपना मजहब छोड़ूं, और अगर मौजज़ा नहीं दिखा सकते तो फिर मैं ईमान भी नहीं लाऊंगा, मैं अपना मजहब क्यों छोड़ूं जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। आने वाले ने जब ये सवाल किया, खलीफा ने कहा कि हमारे पास मौजज़ा है, कहा मौजज़ा है तो दिखाओ। क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि नबी जो होते हैं, जो दावा कोई नबूवत का करता है, तो वो कोई ना कोई मौजज़ा दिखाने के लिए लोग उससे कहते हैं। एक शख्स ने नबी होने का दावा किया, उसको पकड़ लाए दरबार में, बादशाह ने कहा कि तुम नबी हो, कहा बेशक मैं नबी हूँ, तो कहा कि तुम क्या कर सकते हो, कहा तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। तो बादशाह ने कहा मेरे लिए खरबूजा बनाओ, खरबूजा बनाओ। उसने कहा मुझे 3 दिन का मौका दो, बादशाह बोला नहीं अभी बनाओ। तो उसने कहा मैंने नबूवत का दावा किया है, खुदाई का दावा नहीं किया, मैंने नबूवत का दावा किया है, खुदाई का दावा नहीं किया, और जब खुदा खुद 3 महीने लगाता है खरबूजा बनाने में तो मुझे कम से कम 3 दिन का तो मौका दिया जाए, क्योंकि 3 महीने में तैयार होती है खरबूजे की फसल। कहा जब खुदा 3 महीने लगा रहा है, आजकल दूसरा निजाम है इंजेक्शन लगा के, लेकिन तैयार तो नेचुरल 3 महीने खरबूजा लगाता है। बहरहाल बहुत से लोग दावे करते, तो उससे कहा कि हमारे पास मौजज़ा है, हम आपको मौजज़ा दिखाएंगे। तो कहा क्या मौजज़ा है, कहा मौजज़ा हमारी तलवार है, या तो तुम कलमा पढ़ो वरना हम तुम्हारे सर को उड़ा देंगे। उसने कहा ये क्या मौजज़ा होगा, इससे बड़ा और क्या मौजज़ा होगा, या ईमान कबूल करो ये दुनिया से जाओ, यानी ये मौका ही नहीं रहे कि तुम कुछ सोचो। उसने कहा भाई ऑप्शन तो आपने गलत दिए हैं, मुझे जो मौका दिया ये सही नहीं है, मैं तो कोई मौजज़ा देखकर। कहा नहीं हमारे पास तो यही मौजज़ा है। वो समझ गया कि अब मेरी जान बचना, वो बड़ा समझदार था, कहा कि ये इतने ज्यादा समझदार नहीं। उसने कहा अच्छा मुझे मारना चाहते हो, बोला हाँ, या तो कहा मैं कलमा तो नहीं पढ़ूंगा। तो कहा फिर कलमा नहीं पढ़ोगे तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, जल्लाद से कहा इसकी गर्दन उड़ा दो। उसने कहा अच्छा मैं तुम्हारी एक बात मानने को तैयार हूँ, मैं मरने को तो तैयार हूँ लेकिन कलमा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन क्या मैं अपनी कोई वसीयत कर सकता हूँ, अपनी कोई ख्वाहिश बयान कर सकता हूँ। कहा कि वसीयत तो नहीं कर सकते क्योंकि हम पूरा नहीं करेंगे, हमने रसूल की वसीयतों को पूरा नहीं किया, तो फिर तुम हमारे पास वसीयत का सवाल लेके क्यों खड़े हो, रसूल की वसीयत कोई पूरा नहीं किया तो तुम तो हमारे दुश्मन बन के आए हो। तो कहा कि तुम हमारी अपनी ख्वाहिश बताओ। कहा मेरी ख्वाहिश ये है कि मरने से पहले पानी पीना चाहता हूँ। कहा ये कौन सी बड़ी ख्वाहिश है, غلام کو حکم ہوا کہ جاؤ اس کے لیے پانی لے کے آؤ. کہا کہ پانی جب آ گیا تو کہا کہ خلیفہ وقت تو مجھے اس بات کی اجازت دے اور مجھ سے وعدہ کر کہ جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں اس وقت تک مجھے نہیں مارا جائے گا. خلیفہ نے کہا یہ کون سا بڑا وعدہ ہے؟ خلیفہ نے کہا ٹھیک ہے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جب تک تم یہ پانی نہیں پی لو گے ہم تمہیں نہیں ماریں گے. لوگوں نے کہا کہ خلیفہ نے وعدہ کیا. اب اس نے جو پانی تھا اس کو پھینک دیا. عرب کی زمین سوکھی زمین پانی کو چوس گئی نکل گئی. کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ کہا کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں تب تک کوئی دوسرا پانی نہیں. میری بات ہوئی تھی اسی پانی میں, پانی پینے کی بات نہیں تھی میری, یہ پانی پینے کی بات ہوئی. وہ فلسفہ تھا. اس نے کہا کہ پانی پینے کی بات ہوئی تھی, اب تو مجھے زمین سے پانی نکال دے اور پلا دے اور مار دے. اب مسلمان, اب عرب جو تھے اس زمانے میں زبان کے بڑے پکا اپنے آپ کو مانتے تھے, بڑا بڑے حساب کتاب اور ہوگا دوسرا تھا. لہذا اب کہا کہ اب کیا کیا جائے, اب یہ تو مسلمانوں پہ حاوی ہو گیا, نہ کلمہ پڑھ رہا ہے اور جائے گا مار سکتے نہیں چونکہ وعدہ دے دیا. جگہ رسالت کی جگہ پر بیٹھ کے وعدہ دیا ہے, ممبر پہ بیٹھ کے وعدہ دیا ہے. لہذا اب کیا کیا جائے؟ کہا کہ اگر یہ جاتا ہے تو ہماری عزت چلی جاتی ہے, اور اگر اس کو ہم پانی کہاں سے, ہم کہاں سے نکال دیں, ہمارا تو بڑی مشکل سے تو پانی ملتا ہے اور یہ تو پانی زمین آج تک کسی زمین نے واپس دیا ہے پانی. کہا کہ اسی کو پکارو جو ہمیشہ سے کام آیا ہے. کہا کہ جاؤ علی کو بلا کر لاؤ. علی السلام علی مرتضیٰ کو بلایا. علی یہودی کی زمین کا مقدر سوار, ہاتھ جو ہے مٹی سے پھیل. ایک مرتبہ مولا کا غلام قمبر آیا. مولا چلیے دین پر وقت آ گیا. قمبر یہ تو مسئلہ تم بھی حل کر سکتے تھے. کہا نہیں مولا آپ کو جانا پڑے گا, آج بڑا مسئلہ آ گیا ہے, خلیفہ جا رہا ہے یا دین جا رہا ہے؟ کہا خلیفہ جاتا ہے تو جائے لیکن دین نہ جائے. علی نے جو ہے دین کو بچانے کے لیے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ خلیفہ کو بچانے کے لیے علی آ گئے. اگر کسی کو جان بھی بخشی ہے تو یہ سوچ کے کہ آنے والے وقت میں اس کی نسل میں کوئی مومن پیدا ہونے والا, یہ سوچ کے علی نے کسی کو بخشا ہے بس یہ جان کے. لہٰذا مولا کائنات آئے, آنے کے بعد کہا کہ او آنے والے تو اپنا واقعہ خود بتایا گیا, میں خود بیان کروں. کہا کہ اس کی بات میں دم نظر آ رہا ہے, یہ کوئی صحیح آدمی ہے. کہا کہ نہیں واقعہ تو میں ہی بیان کروں گا تاکہ پوری بات واضح ہو جائے. اس نے پورے منوعن تمام واقعے کو مولا مرتضیٰ سے بیان کیا. مولا نے فرمایا قمبر اس کے ہاتھ میں کوزہ دے دو. کہا کہ علی یہ تو خالی ہے, اس میں تو پانی نہیں رہا, تو کوزہ اور اس میں نیا پانی بھرنے کی بات نہیں ہے علی, دوبارہ سے مسئلہ سمجھ لو. کیونکہ یہ کہہ رہا میں جب تک یہ پانی نہ پی لوں. مولا نے کہا ہم اس کو یہی پانی پلائیں گے. لہٰذا کوزہ اس کے ہاتھ میں دیا گیا. علی مرتضیٰ نے زمین کی طرف دیکھ کر کہا اور تراب تجھے ہم تراب حکم دیتا ہے اپنی امانت پر لوٹا دے. وہ لقب جو رسالت خواب نے مولا کائنات کو دیا تھا آج علی نے اپنی زبان سے کہا اور تراب تجھے ہم تراب حکم دیتا ہے. ابھی علی کے دہانے مبارک سے یہ کلمات جاری ہوئے تھے کہ زمین نے اپنے پھیلے ہوئے پانی کو سمیٹنا شروع کیا. چشمہ اس قدر بلند ہوا کہ کوزے میں پانی آتا جاتا ہے اور وہ علی کے قدموں پہ گر کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلوات اللہ. حقیقی نمائندے اور اسی علی کا بیٹا وارث حسین جس نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا مال سے امتحان ہوا کامیاب, جان کا امتحان ہوا. حضرت ابراہیم کی عمر اس وقت 16 سال تھی. 16 سال کا سن بھرپور جوانی, آغاز جوانی. اس وقت جو ہے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے من جنیل. اس زمانے کی بہت بڑی بڑی گلیل جس میں رکھ کے پھینکا جاتا تھا دور سے, اتنی حرارت تھی کہ قریب کوئی نہیں جا سکتا. لہٰذا حضرت ابراہیم کو جب پھینکا جانے لگا تو تمام ملائکہ میں کوہرام برپا تھا. خدا نے کہا جاؤ میرا بندہ امتحان کی منزلوں میں ہے, جا کر پوچھ لو اگر کوئی ضرورت ہو. جبریل نے کہا کہ ابراہیم کوئی چیز کسی چیز کی ضرورت ہے؟ یہ ابراہیم اگر کہہ دیں کہ ضرورت ہے تو پھر خدا کی خدائی کہاں چلی جائے, اور اگر کہہ دیں مجھے ضرورت نہیں ہے تو صرف یہ بات تو صرف خدا کہہ سکتا ہے کہ میں بے نیاز ہوں. لہٰذا ابراہیم نے کہا कि आज इब्राहिम अगर इनकार करते हो तो मारे जाते हो, इकरार करते हो तो तौहीद का वो हाल आलम नहीं रहेगा, क्योंकि अल्लाह को छोड़ के फरिश्ते से वसीला बना लिया, फरिश्ते से मदद मांग ली। इब्राहिम ने कहा कि हाजत तो है लेकिन तुझसे नहीं, तो कहा किससे है, कहा जिससे है वो खुद जानता है। अल्लाह ने कहा कि इब्राहिम हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, तुमने हमारी मोहब्बत का इम्तिहान ले लिया। एक मर्तबा कहा इब्राहिम नारे नमरूद में डाला जाता है तो डाला जाए, हुक्म दिया तो चूंकि खालिक कायनात है, आग को भी उसने बनाया है, मिट्टी को भी उसने बनाया है, पानी को भी उसने बनाया है, यहाँ पे तुराब को अबू तुराब हुक्म दे रहा है, वहां खालिक नार नार को हुक्म दे रहा है कि या नारो कूनी बर्दम व सलामा अला इब्राहिम, ऐ आग इब्राहिम पे ठंडी हो जा, और ना सिर्फ ठंडी हो जा बल्कि इतनी ठंडी हो कि मेरा इब्राहिम सलामत से रहे।
हाँ
ना, आग माइनस में चली जाती तो आपने देखा होगा माइनस में भी मर जाता है आदमी, गर्मी में भी मरता, सर्दी में भी, लेकिन कूनो या नारो कून या नार कूनो कून बर्दम व सलामा, ठंडी हो जा लेकिन इस कदर ठंडी होना जितना मेरा इब्राहिम बर्दाश्त कर सके, और इसकी सलामती मेरा मकसूद है, लिहाजा नारे नमरूद गुलजार बन गया और वो मुवहिद खुदा बच गया। आज तीसरा इम्तिहान हजरत है, क्योंकि इंसान के इम्तिहान जो होते हैं अपनी माल को कब देता है, जब उसकी जान पे पड़ती है। अगर कोई हमारे आगे गल लेके आ जाए, कहा कि अपना माल निकालो, तो कहते हैं हमें माफ करो ये पैसा ले जाओ। लेकिन अगर तीसरा इम्तिहान जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हो रहा है, दूसरा जान का हुआ, तीसरा औलाद का हुआ, तीसरा इम्तिहान औलाद का हुआ, औलाद के इम्तिहान में इंसान भी यही करता है कि अगर दो आज कोई आ जाए आगे कहे कि तुम में से एक को मारना है, बोलो, तो बाप कहता है कि इसको जाने दो, मुझे मार। यानी औलाद ऐसी शय है, ऐसी नेमत है कि जिसके लिए इंसान अपनी जान की बाजी में लगा दे। लिहाजा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि इब्राहिम अपने फर्जंद को, नख्त जिगर को, बड़ी मुद्दत के बाद ये औलाद मिली थी, किसी को अगर बुढ़ापे में औलाद मिले और उसकी मोहब्बत और बेटा भी वो बेटा के जो हर तरह से खूबसूरत बाफहम खुदा का मानने वाला खुदा का नबी, लेकिन अपने ख्वाब की ताबीर को पूरा करने के लिए इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी दे दी, लेकिन अल्लाह ने कुर्बानी कबूल कर ली, बेटे को माफ कर दिया और उसकी जगह पर दुम्बा भेज दिया। अब मसला ये आया, लोग कहते हैं कि हजरत इब्राहिम की कुर्बानी का मुकाबला क्या, अल्लाह ने तो उनके बेटे की जान बचा दी थी, हुसैन को तो कुर्बान होना पड़ा था। यानी इसको दूसरी तरह से पेश करते हैं कि ये मुसलमान ये शिया जो कहते हैं कि कुर्बानी उनके बराबर है और फिदिया ये बन गए, लिहाजा अजीजो हजरत इस्माइल को क्यों बचा लिया गया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी क्यों कबूल हुई। ये हजरत इब्राहिम इमाम हुसैन की कुर्बानी नहीं थी, बल्कि ये कुर्बानी तो हुसैन दे रहे थे, इम्तिहान रिसालत मुआफ का था, आखिरी रसूल का इम्तिहान था, उधर हजरत इब्राहिम का था, इस्माइल का इम्तिहान नहीं था, और इधर हजरत इब्राहिम के बेटे इस्माइल ने कहा कि इंशाल्लाह मुझे शाकिरीन में से पाए, मुझे साबरीन में से पाएंगे, लेकिन जब वक्त आया तो नाना से छोटे सिन में हुसैन ने कहा नाना सब कुछ दे दूंगा, आप वादा कर लीजिए जिब्रील अमीन से, खुदाया सब कुछ दे देगा मेरा नवासा। तभी तो रसालत मां ने कहा हुसैन बिन्नी वाला हुसैन मुझे इम्तिहान में कामयाब करवाने वाला, सामने आमने सामने की बात होती तो इंसान कर लेता है लेकिन पीछे से मुकर जाता है, लेकिन हुसैन ने अपने वादे तकलीफ को फरामोश नहीं किया, इम्तिहान रसालत मां का था, उनको कामयाब करवाया। लोग कहते हैं कि ये कैसे हो, ये ऐसे हो, मिसाल के तौर पर आपकी औलाद आपको अजीज है, चाहे वो 5 साल की हो चाहे वो 30 साल की, औलाद औलाद है, चाहे वो 5 साल की हो चाहे वो 20 की हो या 30 की हो, औलाद औलाद है, लेकिन थोड़ा सा फर्क आ जाता है सिन साल में, और फर्क ये है कि आपका बच्चा बचपन में मिठाई खा रहा है, चॉकलेट खा रहा है, आपने उसका इम्तिहान लेने के लिए कहा कि बेटा मुझे ये चॉकलेट दे दो, उस बच्चे ने वो चॉकलेट आपको दे दी कि बाबा छोटा सा, अब आप उसको धीरे धीरे अपने मुंह के पास ले जाते हैं और बच्चे का चेहरा देखते हैं, दे तो दिया उसने लेकिन उसके चेहरे के तासुरात को देखकर बाप कहता है कि नहीं ये मिठाई मेरे को नहीं खानी है, नहीं बेटा ये रही तुम्हारी, एक इम्तिहान होता है कि बेटे का ये देता है या नहीं, तो बाप उस बचपने में दी हुई चीज को वापस कर दिया करता है, लेकिन यही बेटा जब 30 साल का हो जाए और बाप खाना मांगे और बाप ले ले तो बाप ये नहीं कहता नहीं बेटा बस मेरे इम्तिहान है, बाप बेटा खा लेता है। तो मालूम ये हुआ कि औलाद औलाद है बराबर है लेकिन सिन्नो साल में फर्क हो जाता है। हजरत इब्राहिम की कुर्बानी हजरत इस्माइल की शक्ल में क्यों बच गए हजरत इस्माइल और हजरत रिसालत बाप की कुर्बानी में हुसैन क्यों शहीद हो गए, बस यही फर्क है जो बचपन की औलाद में और जवानी की औलाद में फर्क है। अजीजो यही फर्क था, जब इब्राहिम का इम्तिहान लिया जा रहा था तो अब्दियत बचपने में थी, जब हुसैन का इम्तिहान हो रहा था तो अब्दियत जवानी में आ गई थी, लेकिन हुसैन ने इस कुर्बानी को इतने खूबसूरत अंदाज में पेश किया। अजीज इस कुर्बानी में कोई बदल नहीं मिलता, दुनिया में हजारों लोग मारे जा चुके हैं, हजारों लोग कट गए हैं लेकिन उन पर रोने वाला कोई नहीं है। आखिर क्या वजह है कि इस नमाज़े रसूल की 72 साथियों के साथ यादगार को मनाने के लिए आलम इस्लाम जमा हो जाता है और उसमें भी उनके चाहने वाले। अजीज़ो हमें नाज करना है अपने मुकद्दर पे कि खुदाया तूने हमें उस कौम में करार दिया कि जो तेरे हबीब के तस्कीन कल्ब का सबक करा पाए। अजीज़ानों अजीज़ान मोहतरम, शियायान अली हैदर कर्रार चाहे वो सैयद हो चाहे गैर सैयद हो, वो दोनों तरह से काबिल एहतराम। सादात इसलिए काबिल एहतराम है कि वो औलाद सैयदा है और गैर सादात इसलिए काबिल एहतराम है कि वो दुआ सैयदा है। जनाब सैयदा ने दुआ की थी कि एक कौम ऐसी खल्क कर, सैयद तो पैदा हो चुके थे अब कहाँ से खल्क कर, गैर सादात के लिए एक दुआ। तो मालूम यह हुआ कि हुसैन के चाहने वालों को सबको जनाब सैयदा ने अपने दामन में जगा दी है और यही कहा कि अपने ज़ेर रिदा उन लोगों को ऐसे महशर लेकर जाएगी। यकीनन हुसैन की माँ बड़ी रहीम दिल खातून है, वो अपने बेटे का पुरसा लेने के लिए आती है। अजीज़ो आप अपने इस सर्दी के माहौल में अपने घरों को छोड़ते हैं, अपनी तमाम आराम को छोड़ते हैं। हाँ अजीज़ो हक है इस आराम को छोड़ा जाए क्योंकि हुसैन ने भी अपने नाना के मदीने को छोड़ा, हुसैन ने भी इस दीन मुबीन इस्लाम को बचाने के लिए। फ़र्क इतना सा है कि इब्राहिम की कुर्बानी और इम्तहान की मंजिलों में इब्राहिम कामयाब होते गए और उनकी चीज़ें उनको वापस लौटा दी गई, हजरत इब्राहिम की जड़ें भी उनको लौटा दी गई, हजरत इब्राहिम की जान भी उनको वापस लौटा दी गई, हजरत इब्राहिम की औलाद भी उनको वापस लौटा दी गई, लेकिन हुसैन ने जो कुछ राह खुदा में दिया वो सब कबूल कर लिया गया। हाँ अजीज़ो ये हुसैन इब्ने अली करबला में आ गया, हमारा मेहमान है और आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तीन दिन से हमारे मेहमान हैं, क्योंकि हमारे माहौल में हम जैसे ही चाँद दिखता है तो ये तसव्वुर करते हैं कि हमारा मौला हमारा मेहमान हो गया। हाँ अजीज़ो आज हम हुसैन को अपना मेहमान बना रहे हैं लेकिन सन 61 हिजरी में हुसैन के कुछ लोग मेहमान बने थे। हाँ अजीज़ो ये माहौल चलता रहा, हुसैन इब्ने अली अपने इस अज़्म को और इरादे को लेकर यजीद की फौजों के मुकाबले में खड़े हो गए, लश्कर पे लश्कर आते रहे, फौज की तरक्कियाँ होती गई, असले पे असला आता गया, लोग अपनी तमाम की तमाम चीज़ें हुसैन के मुकाबले में इस्तेमाल करने के लिए देने लगे, जिनके पास जान थी वो अपनी जानों को लेकर आ गए, जिनके पास असला था वो असला लेकर आ गए, जिनके पास हैवानात थे उन्होंने अपने हैवानात हुसैन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए फौज यजीद को फराहम कर दिए। अजीज़ो ऐसे माहौल में जहाँ पर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के फरमान पर यजीद इब्ने माविया की फौजें पिसर साद उमर साद और शिमर की सरपरस्ती में करबला के मैदान पर मौजूद थी और अपनी फतह का नगारा बजा रही थी कि हुसैन को हिरासा कर लो, ऐसे ही माहौल में एक शख्स यजीद की फौज से उठता है और अपने खैमे के बाहर टहलना शुरू करता है, हजरत टहलना शुरू करता है। एक सिपाही ने जब ये देखा तो कहा कि ये कौन है जो खैमे के बाहर इतनी तेज़ी से टहल रहा है, कहा जब मैं करीब गया तो मैंने क्या देखा, हुर इब्ने यजीद रियाही जो है टहल रहे हैं। कहा कि हुर आखिर तेरी ये कैफियत क्या है, हुर की पिंडलियाँ लरज रही हैं, आवाज़ में कपकपाहट है, आंखों से आंसू जारी है। आने वाले ने कहा कि हुर अगर मुझसे कोई पूछता कि इस पूरे फौज में कौन मुकाबिल सबसे ज़्यादा बहादुर है तो इस पूरी फौज में तुझसे ज़्यादा बहादुर कोई नजर नहीं आता, लिहाजा क्या तू हुसैन के इस मुख्तसर से लश्कर से डर रहा है, तेरी पिंडलियाँ क्यों लरज रही है।
मर्तबा हुर कहता है कि देखो जो मैं देख रहा हूँ तुम नहीं देख रहे। अपने बेटे को बुलाया, अपने गुलाम को बुलाया, अपने सिपाही को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि देखो कि तुम हुसैन के खेमों से क्या आवाजें आ रही है। हुसैन के खेमों से दो तरह की आवाजें, तीन तरह की आवाजें आ रही थी। एक आवाज तो माओ की थी जो कह रही थी कि बेटो हम अपना दूध नहीं बख्शेंगे अगर तुमने हुसैन पर अपनी जान को कुर्बान न किया। दूसरी तरफ बच्चों की आवाज अल-अताश आ रही थी, अल-अताश अल-अताश अल-अताश, ये आवाज बुलंद थी। और तीसरी आवाज हुसैन के उन सहाबा की थी कि जो याद इलाही में मुनाजात कर रहे थे, हुसैन की आवाज थी। कहा कि इस आवाज को सुनो, अरे इन बच्चों की आवाज अल-अताश का मुजरिम मैं हूँ, इन बीवियों की इस बात का मुजरिम मैं हूँ कि ये अपने बच्चों को कुर्बान करें। अरे ये मुनाजात जो कर रहे हैं इन सबको यहाँ पर घेर के लाने का कसूर मेरा है, अरे हुसैन को मैं यहाँ लेकर आया हूँ। तो कहा कि हुर क्या किया जाए। कहा कि अगर मेरी तौबा में जानता हूँ ये यसरब का शहजादा मुझे माफ कर देगा। अपने बेटे पर इख्तियार था, अपने भाई पर इख्तियार था, अपने गुलाम पर इख्तियार था, इन दोनों तीनों से कहा कि मैं हुसैन की तरफ जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ आना चाहते हो तो आ जाओ। एक मरतबा हुसैन तरफ रवाना हुए, हुर्रे जरी चला बेटे को लेकर, भाई को लेकर, गुलाम को लेकर। जब हुर्रे जरी आया तो आने से पहले हुर ने कहा अपने बेटे से कि बेटा मेरे हाथों को इस तरह बांध दो जिस तरह किसी मुजरिम के हाथों को बांधा जाता है। जब हुर के हाथों को बांध दिया गया तो हुर्रे दिलावर अपने घुटनों के बल घोड़े से उतर के हुसैन के खयाम की तरफ चला। जनाब अबुल फजल अब्बास ने देखा कि फौज शाम की तरफ से कुछ लोग आ रहे हैं। एक मरतबा अली अकबर को बुलाया और मोहम्मद को पुकारा, मुस्लिम इब्ने औसजा को पुकारा कि आओ आओ, लगता है कि कोई दुश्मन हमला करने आया है। लेकिन एक आवाज आई, वो हुसैन की आवाज थी, ए भैया पास ये दुश्मन नहीं आ रहा है बल्कि मेरा मेहमान हुर आ रहा है। एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, हुर ने अपने जबान से कुछ ना कहा, अपने सर को हुसैन के कदमों में डाल दिया और कहा कि हल्ली तौबा, मेरे लिए तौबा अल्लाह की कबूल हो सकती है। हुसैन ने इसका जवाब इस तरह से दिया, अपने दस्ते मुबारक को बढ़ाया, हुसैन ने हुर के सर कदमों से उठाकर अपने सीने पर जगह दे दी, हुर को अपने सीने से लगा लिया। आए हुर्रे जनी, अल्लाह ने तेरी तौबा कबूल की, मैं तेरे रोजे महशर शिफात का जिम्मेदार हूँ। एक मरतबा हुर से कहा, अरे हुर जिसको अल्लाह माफ कर देता है बंदों का मुजरिम नहीं रह जाता। ऐ अली अकबर उनके हाथों को खोल दिया जाए। बस एक मर्तबा उनके हाथों को खोला गया, हुसैन से कहने लगे, हुसैन इब्न अली मैं मुजरिम आपका हूँ, मैं आपको यह कहर के लाया हूँ, लिहाजा सबसे पहले मेरा बेटा रन में जाएगा। अरे मेरे मौला, मेरे जवान बेटे को इजाजत दीजिए। इधर अली अकबर ने सदाए अज़ान बुलंद की, तीरों की बौछ
يا عالم الذين ظلموا ان يكن قدر ان ينقلبوا